वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न पर कि भाई कर्म संन्यास और कर्म योग का दोनों का फल जो है एक है, क्या फल है कर्म संन्यास का और कर्म योग का? मुक्ति फल है। कर्म संन्यास क्या है?
99.9%
यह कर्म संन्यास। कर्म योग क्या है? के लिए कर्म करना। कोई विशेष कर्म है? नहीं, जो हम कर्म करते हैं वही करना है। तो अर्जुन का प्रश्न था कि आपने कर्म संन्यास और कर्म योग की प्रशंसा जो है चौथे अध्याय में की है, तो आप मेरे को निश्चित करके बताएं कि कौन सा मेरे लिए ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों का जो है फल एक ही है, दोनों निःश्रेयस देता है, दोनों ही मुक्ति देता है। और कर्म योग के अंदर कर्म संन्यास का जो एस्पेक्ट है उसमें है। संन्यासी किसको कहते हैं? तो बोले जिसमें कोई आकांक्षा नहीं है, जिसमें कोई द्वेष नहीं है, वो संन्यासी है। तो ये फैक्टर जो है, आकांक्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, वो कर्म योग में भी है, क्योंकि हम फल की आकांक्षा तो करते नहीं है कर्म योग के अंदर में, जो मिले वो हम लेते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान की संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः जिसने कर्म योग नहीं किया है, अगर वो कर्म संन्यास ले ले तो उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख मिलेगा मतलब क्या? सक्सेस नहीं होगी। आपने बिना कर्म योग किए वासना आपकी पूरी है और आप जो है चले गए हिमालय पर तपोवन महाराज के पास में श्रवण मनन निधि ध्यासन करने। अब बताओ आपकी वासना आपको वहां श्रवण मनन निधि ध्यासन करने देगी? नहीं देगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता। अगर आपने कर्मयोग नहीं किया है तो आपको दुख मिलने वाला है, आप सीधा जो है कर्म संन्यास में नहीं जा सकते। योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरे न गदिच्छति। मगर योग युक्त है, योग मतलब जिसने कर्मयोग किया है उसको क्या होगा? ना अची रहना, उसको देरी नहीं लगेगी, उसको ज्ञान जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है हमको? कर्म संन्यास, पहले कर्म योग करना है। कर्म योग करके बाद फिर आप कर्म संन्यास के अधिकारी बनोगे। फिर भगवान कहते हैं जिसने कर्म योग किया है, सातवें श्लोक में बता रहे हैं, योग युक्त, योग युक्त जिसने कर्म योग किया है, विशुद्ध आत्मा। यहां आत्मा का मतलब मन, कर्म योग करके मन शुद्ध होता है, इसलिए यहां विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा, फिर आत्मा का मतलब क्या हुआ? जिसने अपने देह को जीत लिया, जितेंद्रिय। विजित आत्मा का वहां इंद्रियां क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड जो है जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, पहले आया विशुद्ध आत्मा, मन को जीत लिया, मन को शुद्ध कर लिया, बीच वाला जो विजित आत्मा है, वहां आत्मा का मतलब देह हो गया, जिसने अपने देह को भी कंट्रोल में रखा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते, और वो देख रहा है कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जितने भी भूत हैं, बीइंग्स हैं, सबकी आत्मा एक ही है, वो सारे के सारे मेरे में है, ऐसा वो देखता है। तो ऐसा व्यक्ति नैव किंचित करोति करोमि इति युक्त मन्यते तत्त्वित। तत्त्वित मतलब जो ज्ञानी है उसका क्या मानना है, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ज्ञानी का मानना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कैसे कर रहा है वो, क्या बेसिस है उसका, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को आत्मा या ब्रह्मन मानता है और ब्रह्मन करता है, ब्रह्मन करता है, इसलिए वो कहता है नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। हालांकि काम कर रहा है बहुत कुछ, मगर मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, पकड़ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मन की चिंतन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर उसको ये पता है इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों के साथ में व्यापार कर रही है। देखो एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि आत्मा करता है, अगर आत्मा करता है तो फिर करता कौन है, आत्मा को छोड़कर दूसरी क्या चीज है, अनात्मा है या प्रकृति है या माया है, जो भी नाम आप दे दो, या गुण बोलो या सत्तर तमस बोलो। तो कहते हैं कि इंद्रियानि इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों का अर्थ मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियां सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर में वर्तन्ते इति धारयन्। उसको मालूम है कि ये ट्रांजेक्शन इसमें चल रहा है। तो इंद्रियां क्या है, आत्मा है कि अनात्मा, आत्मा। इंद्रियों का अर्थ सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, तो अनात्मा का अनात्मा के साथ में व्यापार हो रहा है, ये उसको मालूम है। वो कैसे कर्म करता है, देखो दसवें श्लोक के अंदर पूरा कर्मयोग एक श्लोक के अंदर बता दिया है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इव अंबसा। ब्रह्मणि आधाय, सब कुछ जो है वो ब्रह्मन की खुशी के लिए कर रहा है, सब कर्म ईश्वर की खुशी के लिए कर रहा है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जितने भी कर रहा है, संगम त्यक्त्वा, देखो ये संग वर्ड जो है ना, इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये संग जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। जहां पर संग हुआ वहां दुख आ जाएगा, मगर ज्ञानी कैसे करता है, संगम त्यक्त्वा। हम कैसे करते हैं, संगम के साथ करते हैं, अटैचमेंट के साथ करते हैं। जब अटैचमेंट के साथ होता है तो दुख होगा, तब दुख आएगा ही आएगा। संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन, जो भी आदमी बिना संग के अगर कर्म करे तो उसको क्या कहते हैं, फिर बोलते पाप नहीं मिलेगा उसको। पद्म पत्र इव अंबसा, जैसे पद्म पत्र जो है वो कहां है, पानी के अंदर ही है, मगर पानी से भीजता नहीं है, और उसके ऊपर अगर रेन ड्रॉप भी पड़ जाए तब भी भीजता नहीं है। उसी तरह से कर्म इस व्यक्ति को किसी तरह से भी बांधते नहीं है, उसको लेपन नहीं करते, कुछ भी नहीं कर पाते उसके ऊपर। फिर कहा कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्ध हे। तो योगी कैसे करते हैं काम, जैसे देखो जब संग होगा ना तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आप जब भी कोई कर्म करते हो उसके अंदर संग रहेगा तो उसके बाद कर्म फल आएगा, जैसे ही कर्म फल आएगा तो उसके साथ में लाइक्स डिसलाइक्स आएंगी, लाइक्स डिसलाइक्स का इम्प्रिंट हो जाएगा, वासना बन गई, ये हो गया संग। अगर संग नहीं है, संग के कारण वासना बनती है, अगर संग नहीं है संगम त्यक्त्वा फिर क्या होता है, आत्मशुद्धि होती है। आत्मशुद्धि मतलब मन की शुद्धि होती है। तो कैसे करता है, कायेन, कर्म कैसे कैसे हो सकते हैं, काया शरीर से, मन, मन से भी कर्म हो सकते हैं, बुद्धि, बुद्धि से भी कर्म हो सकते हैं, इंद्रिय, इंद्रियों से भी कर्म हो सकते हैं। तो चार चीजें यहां बताई, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, केवल ही, ये केवल जो है विशेषण, वो चारों चीजों के साथ जाएगा। चारों के साथ है मतलब केवल कायेन, केवल ही मनसा, केवल ही बुद्धिया, केवल ही इंद्रिय। केवल ही का मतलब क्या हुआ, शंकराचार्य जी कहते हैं ममत्व वर्जितम, ममत्व वर्जितम, ममत्व नहीं है उसमें। शरीर से जो जो काम करता है उसमें वो अपने लिए नहीं कर रहा है, मन से जो काम कर रहा है अपने लिए नहीं कर रहा है, बुद्धि से अपने लिए नहीं कर रहा है, इंद्रिया के जितने भी काम हो रहे हैं वो अपने लिए नहीं हो रहे हैं। ममत्व वर्जितम, योगिना कर्म कुर्वंती संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संगम त्यक्त्वा, योगी जो हैं, जो कर्म योगी लोग हैं, वो क्या करते हैं, संग नहीं करते, अटैच नहीं होते। अगर अटैच नहीं होंगे तो क्या होगा, मन की शुद्धि होगी। आपको समझ में आ रहा है, अगर संग होगा तो लाइक डिसलाइक लगेंगे। कैसे होते हैं, हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं, कर्म के बाद में कर्मफल आएगा, कर्मफल आएगा तो लाइक डिसलाइक्स होंगे, लाइक डिसलाइक्स होंगे, इम्प्रिंट हो गया, इम्प्रिंट हो गया मतलब वासना बन गई। अब इसका उल्टा देखो, आप कर्म कर रहे हो मगर संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मेरे लिए नहीं हो रहा है, कर्म किसके लिए हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है। और जब हमको उसका फल मिलता है तो हम कैसे लेते हैं, प्रसाद बुद्धि से लेते हैं। प्रसाद अगर जब मिल जाए तब हम उसके अंदर लाइक डिसलाइक नहीं करते हैं, हम नहीं कहते हैं अरे मेरे को लड्डू दिया इनको पेड़ा क्यों दिया, या मेरे को छोटा क्यों दिया उनको बड़ा क्यों दिया, ऐसा नहीं कहते हम। प्रसाद जो मिल गया हम उसमें खुश हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम कर्म करें, उसके साथ में अगर अटैच ना हो, कर्म के साथ में ममत्व ना हो, ईश्वर अर्पित हो और प्रसाद बुद्धि से लिया जाए कर्मफल, तो वो ऐसा कर्मफल इम्प्रिंट नहीं छोड़ता है, राग द्वेष नहीं बनाता है। कई महात्मा लोग कहते हैं जब आप लोग नौकरी करते हो किसी कंपनी के अंदर में, तो आप किसकी खुशी के लिए काम करते हो, बॉस के लिए करते हो, आपकी अपनी लाइक डिसलाइक तो नहीं चलती वहां पर, आप चाहोगे कि नहीं नहीं आज नहीं काम पर जाना है, कल जाएंगे, या नहीं होता वो सब। तो उसके जो है आपके लाइक्स डिसलाइक्स नहीं बनते हैं, क्योंकि अपना ममत्व तो नहीं है उसमें, वो किसके लिए कर रहे हैं, किसकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। हम हमारी खुशी किस में है, काम ना करना पड़े और तनख्वाह मिल जाए, ये सब हम उसमें खुश हैं। तो वो राग द्वेष नहीं बनते, उनकी वासना इम्प्रिंट नहीं होती। देखो एकदम साइंस है ये, वो आपकी वासना, अपनी वासना के हिसाब से काम कर रहे हो, और ईश्वर के लिए अगर करोगे तो फिर वो वासना नहीं बनती है। इसलिए यहां पर कहा तत्त्वा आत्मशुद्धि। अब आपको समझ लेना चाहिए आत्मशुद्धि, मन की शुद्धि कैसे होती है। केवल मीनिंग पकड़ लेने से नहीं होगा, आपको पीछे उसके जो विज्ञान है उसको समझना है। कैसे अगर हम संग के साथ में करेंगे तो वासना कैसे फॉर्म होती है, और बिना संग के करेंगे तो वासना फॉर्म नहीं होती है। अगर वासना फॉर्म नहीं होती है तो मन अशुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट,
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा
शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्
शान्तिम्
आप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्त कामकारेण
अयुक्त कामकारेण
फले सक्तो निबध्यते
फले सक्तो निबध्यते
युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः युक्तः मतलब कर्मयोगी युक्तः मतलब कर्मयोगी जो कर्म योग के भाव से युक्त है और इस प्रकार कर्म करता है तो कैसे कर्म करता है एक तो संगम त्यक्त्वा है संगम त्यक्त्वा ममत्व नहीं है अपने लिए नहीं कर रहा है किसके लिए कर रहा है ईश्वर के लिए कर रहा है नंबर टू नंबर थ्री प्रसाद बुद्धि ममत्व नहीं है मैं कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूं जो कर्म कर रहा हूं वो ईश्वर की खुशी के लिए है मेरी खुशी के लिए नहीं है और तीसरा जो कर्म फल मिलेगा वह मैं प्रसाद के रूप में लूंगा कर्म फलम त्यक्त्वा काम में कर्म के अंदर देखो कर्म फल की इच्छा होती है काम या कर्म के अंदर कर्म फल की इच्छा होती है ये अपने कर्तव्य कर्म कैसे कर रहा है कर्तव्य कर्म कौन से हुए नित्य नैमित्तिक उपासना प्रायश्चित ये चार मिला के वो कर्तव्य कर्म अपने कर रहा है कैसे कर रहा है ईश्वर की खुशी के लिए कर रहा है इसमें काम में कर्म नहीं है उसका ममत्व नहीं है उसके अंदर उसका अपना इंटरेस्ट कुछ नहीं है शांति आपनोति नैष्ठिकीम उस आदमी को क्या मिलता है शांति मिलती है शांति आपनोति नैष्ठिकीम नैष्ठिकीम मतलब जो भगवत प्राप्ति रूपी जो शांति मिलती है ना ज्ञानम लब्धा पराम शांति वो शांति मिलती है आत्यंतिक सुख मतलब शांति आप याद रखना बराबर शांति तो उसको नैष्ठिकीम शांति मिलती है तो पहला स्टेप क्या हुआ पहले आपको मन शुद्ध करना है उसके बाद दूसरा स्टेप ज्ञान प्राप्ति करनी है मन शुद्ध कैसे होगा कर्मयोग अब आप लोग को अब आपको रात को सोते सोते भी कोई पूछ लेगा तो आप लोग बता दोगे कैसे मन शुद्ध होता है कर्मयोग कर्मयोग क्या है कर्मयोग क्या है आपको पता लग गया कर्मयोग है जब मन शुद्ध हो जाएगा वासना कम हो जाएगी उसके बाद में आपको ज्ञान प्राप्त करना है ज्ञान प्राप्त करने से आपको तीसरा स्टेप आएगा ज्ञान के अंदर निष्ठा ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान के अंदर निष्ठा अबाइडेंस जो है दो अलग चीजें हैं हम सबको आत्मा क्या है मालूम है अनात्मा क्या है सब मालूम है दुख कौन देता है आत्मा देता है ये भी हमें मालूम है अनात्मा दुख देता है ये भी हमें मालूम है मगर फिर ये ज्ञान होने के बाद में मगर उसमें अबाइडेंस नहीं होता है अबाइडेंस नहीं हो पाता है उसके बाद ज्ञान निष्ठा होगी ज्ञान निष्ठा होने से ही परम शांति देखो ईश्वर के लिए जब हम कर्म करते हैं ना कृत कृत्यता आती है फुलफिलमेंट आएगी हम अपने लिए जब कर्म करेंगे कभी फुलफिलमेंट नहीं होती है कभी संतुष्टि पूरी नहीं होती है आपने सारी जिंदगी काम करके देख लिया आप अभी भी असंतुष्ट हो है कि नहीं 50-60% लाइफ तो गई ना अभी तो अपना एक्सपीरियंस है कि हम आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए मगर भगवान के लिए जब करोगे ना तो कृतकृत्य आएगी और कर्म योगी को अकर्तित्व मिलता है क्योंकि वह ईश्वर से जुड़ा है ईश्वर से जुड़ा है इस वास्ते उसको अकर्तित्व मिलता है अच्छा जो अयुक्त है, युक्त मतलब कर्मयोगी, अयुक्त हम लोग आज तक जो करते आए हैं, हम लोग क्या कर्मयोगी हैं कि नहीं? आप भगवान की खुशी लेके कर रहे हो कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्यों क्यों शर्म करते हो, बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आप अयुक्त हो तो क्या होगा, अब बता रहे हैं। देखो, अयुक्त काम कार्य न फले सक्त निबद्धते। अयुक्त मतलब जो कर्म योग के हिसाब से कर्म नहीं कर रहा है, जैसे हम कर रहे हैं अभी, उसका क्या होगा? काम कार्य न, काम कार्य न, कामना की प्रेरणा है, कुछ चाहिए हमें, अपनी खुशी के लिए कुछ चाहिए, काम कार्य न फले सक्त। देखो सक्त, फल के अंदर हमारा जो है इंटरेस्ट है, ये इतना मिलना चाहिए हमें, फले सक्त निबद्धते, बंधन में आ गया। बंधन में आ गया मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गया। जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गया मतलब क्या? आपने राग देश बना दिए। अगर आप फल की आसक्ति के हिसाब से अपनी खुशी के लिए कर्म करोगे तो आपने अपनी वासना की कैपिटल बढ़ा ली। अगर आपकी वासना की पूंजी बढ़ गई तो भगवान आपकी वासना के हिसाब से दूसरा आपको शरीर देंगे। जब तक आपकी वासना एग्जॉस्ट नहीं होती है तब तक आपको मिलता रहेगा। और हम हर जन्म के अंदर वासना को बढ़ाते हैं। अच्छा है, आपने जवाब दे दिया, बढ़ाते हैं। इसलिए क्या होता है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इससे हमको यह पता लगता है विषयाशक्ति दुख का कारण है। चूंकि कर्मयोगी जो है आसक्ति छोड़ देता है, इसलिए उसकी वासना आस्ते 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 छीन हो जाती है और अंत में वो शांति को प्राप्त करता है। तो दोनों ही कर्मयोग करने वाले और कर्म संन्यास वालों को मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं उनको क्या मिलता है? जो कर्मयोग नहीं करते हैं, कर्मयोगी और कर्म संन्यासी को मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान ने आगे कह दिया फल दोनों का एक है, दोनों को मुक्ति मिलेगी। मगर जो कर्मयोग कर्म संन्यास नहीं करते उनको क्या मिलेगा? बंधन मिलेगा। तो भगवान ये कहना है अर्जुन, तुम कर्मयोग करो नहीं तो तुम बंधन में पड़े रहोगे। ऐसा जो है भगवान चाहते हैं कि अर्जुन तुम कर्म करो। अच्छा, यहां पर शंकराचार्य जी लिखते हैं, सब कर्म ईश्वर के लिए ही हैं, मेरे फल के लिए नहीं। इस प्रकार निश्चय वाला योगी कर्म फल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली मोक्ष रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आप लोग एकदम क्लियर है कि नहीं? मैं फिर पढ़ दूं, ये मेरे वर्ड नहीं है, शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। सब कर्म ईश्वर के लिए ही हैं, सब कर्म मेरे फल के लिए नहीं। इस प्रकार निश्चय वाला योगी कर्म फल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली मोक्ष रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है? शंकराचार्य जी कहते हैं यहां पहले अंतःकरण की शुद्धि नंबर वन, फिर ज्ञान प्राप्ति नंबर टू, फिर सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति। सर्व कर्म संन्यास छोड़ दिया, अब हम ज्ञान के अंदर निष्ठा ले रहे हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की निष्ठा दो अलग अलग चीजें हैं। इस प्रकार क्रम से परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार क्रम से, ये सीरियल है। तो आप सोचोगे कि हमको सीधा शांति मिल जाए या सीधा ज्ञान प्राप्त हो जाए, सीधा हम कल सवेरे मेडिटेशन में बैठेंगे और ज्ञान उपलब्ध हो जाए? नहीं होगा। क्या करना होगा? उसका सीरियल उन्होंने बता दिया, पहले अंतःकरण की शुद्धि। ये देखो, ये सारे जीवन के लिए याद रखना, ये भगवद गीता में भी आएगा, रामायण में भी आएगा, भागवत में भी आएगा, उपनिषद में भी आएगा। यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहां पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर सर्व कर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति इस प्रकार क्रम से परम शांति को प्राप्त होता है, इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिए, हम लोग को ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, अब ये जो है ज्ञानी कैसे काम करता है? अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ऐसा तो नहीं होता है कि आपका ज्ञान प्राप्त हो गया आपका शरीर छूट जाएगा। बहुत लोगों को ये डर होता है, लोग जो है मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, ध्यान में नहीं बैठते हैं, पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं। देखो एनेस्थीसिया जब देता है ना, आप जाते हो अस्पताल में, तब डर लगता है पता नहीं वापस हमको ला पाएगा कि नहीं। वो एनेस्थीसिया को भी दुख दुख होता रहता है बीच बीच में, पता नहीं क्या होगा, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। और पेशेंट को तो होता ही है, पता नहीं अब जा रहे हैं क्या होगा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो लोगों को, बहुत लोगों को ध्यान में ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है ध्यान में लीन हो गया शरीर छूट गया। तो ये ज्ञानी कैसे करता है काम? तो कहते हैं 13वां,
सर्व कर्माणि मनसा,
सर्व कर्माणि मनसा,
सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी,
सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी,
नवद्वारे पुरे देहि,
नवद्वारे पुरे देहि,
नैव कुर्वन्न कारयन्,
नैव कुर्वन्न कारयन्,
सर्व कर्माणि मनसा, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्।
वशी, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी। वशी का मतलब क्या है? जितेंद्रिय, शंकराचार्य जी कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, या जित चित्त, जित चित्त ना, जितने माइंड को अपने को कंट्रोल कर लिया, उसने अपने मन को कर्म योग द्वारा शुद्ध कर लिया है, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि शरीर कंट्रोल्ड हैं, ऐसा व्यक्ति अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके लिए, कर्मयोगी के लिए? कर्म संन्यास। अब कर्म संन्यास के लिए वो तैयार है, कर्म संन्यास के लिए तैयार है। उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि उसको जो है ज्ञान के लिए निर्देश मिल जाएगा, यहां जाना है। नहीं तो कई बार लोग होता है ना कि वो चिन्ह मिशन यमुनोत्री के चारों तरफ है, मगर पता नहीं लगता यहां आए ज्ञान यहां मिलता है, कोई आके बता देता अरे यहां जाओ यहां ज्ञान मिलेगा, तब लोग आते हैं, नहीं पता ही नहीं लगता है। मनसा सर्व कर्माणि सन्न्यस्य सुखम आस्ते। देखो कैसे वो सन्यास करता है सब कर्मों का, मनसा, केवल मन में सन्यास है, काम करता रहता है मगर उसके साथ में कोई संग नहीं है कर्मों के साथ में। मनसा संन्यस्त, समस्त कर्म नित्य नैमित्त काम और एवं निषिद्ध मन से छोड़ देता है। गुना गुनेशु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों के विषय के साथ में काम कर रही हैं, बस मैं नहीं कर रहा हूं, यानी विवेक बुद्धि से त्याग देता है। विवेक बुद्धि क्या है? सब कर्मों में अकर्म को देखना, आपको याद है जितनी भी कर्म हो रहे हैं उसके अंदर हमको कहां अपनी नजर डालनी चाहिए? अकर्ता आत्मा में जाननी चाहिए, यानी कि वह तत्वदर्शी है। कर्मणि अकर्म पश्येत, जो ऐसा करता है तो उसको क्या होता है, सुख पूर्वक स्थित हो जाता है। ज्ञान निष्ठा के कारण उसके मन में शांति रहती है। मगर ज्ञानी कर्म करता है, कैसे कर्म करता है? कर्म साक्षी भाव से करता है, साक्षी भाव से कर्म करता है ज्ञानी। कर्म वो करेगा मगर वो उसका केवल साक्षी है, दैट्स ऑल। हमारे भीतर जो साक्षी है वो क्या करता है? वो भी खाली देखता है ना चुप से। ज्ञानी कहां पहुंच गया है? ज्ञानी साक्षी लेवल पर पहुंच चुका है ना, तो वो जो कर्म करता है वो कैसे देखता है? साक्षी हिसाब से देख रहा है, हो रहा है होने दो, डोनेशन आया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, हम साक्षी है बस, दैट्स ऑल। अच्छा ज्ञानी जो है विरक्त है, विरक्त किससे है, वो ही थी ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट से वो विरक्त है, संसार से वो विरक्त है, वैराग्य उसको आ चुका है। कैसे वैराग्य आया उसको? विवेक से आया। क्या विवेक किया उसने? आत्मा अनात्मा का विवेक किया। उसको मालूम हो गया कि अनात्मा से हमको सुख नहीं मिलने वाला है, आत्मा से हमको सुख मिलने वाला है। ये उसने विवेक किया। और सारा दुनिया क्या है, सारा संसार क्या है, सारा जगत क्या है, अनात्मा है। और वो हमको सुख देता है, वो हमें दुख देता है, सारा संसार हमें दुख देता है, ये उसको मालूम है। इसलिए वो जो भी कर्म करता है ना, वो केवल जो है साक्षी रूप में केवल देखता है और कुछ नहीं करता। फिजिकली कर्म हो रहे हैं मगर मनसा माइंड के अंदर वो क्या है, वो अपने आप को जानता है, मैं कौन हूं, मैं साक्षी हूं, मैं केवल देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखो आप अगर स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देखने के बाद में अगर आप उठ गए, मान लो किसी कारण से आप फिर उस स्वप्न के अंदर में घुसते हो, आपको इंटरेस्ट रहता है उस स्वप्न में? कुछ कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप स्वप्न के अंदर राजा थे, आपकी एक ब्यूटीफुल रानी थी, अगर आप रानी हैं तो आपके एक जो है ब्यूटीफुल राजा थे। आप स्वप्न के बाहर आए, स्वप्न के बाहर आके आपने देखे तो हम तो वही रामदास हैं। अब आप वो रामदास सोच रहा है कि हम फिर जरा राजा बन के देखें हम, अब वो फिर उसके अंदर घुसना चाहता है, तो उसको तो अब अपनी स्थिति मालूम है ना कि मैं कौन हूं, मैं तो रामदास हूं, मैं तो राजा नहीं हूं, मैं तो दास हूं। अब वो अगर चिंतन भी करता है तो वहां से उसको कोई विशेष कुछ मिलता नहीं है। ठीक उसी तरह से देखो ज्ञानी जो है ना, जब वहां अकर्ता भाव में पहुंच जाता है ना, ज्ञान हो जाने के बाद में, अब उसको ये सारा का सारा स्वप्न सा लगता है, अब इसमें घुस के उसको कुछ मिलता नहीं है। आया समझ में आपको? सपने के उदाहरण से आपको समझ में आ रहा है? सपने के पहले मैं भिखारी था, सपने में मैं राजा बन गया। अब भिखारी जब वो उस भिखारी जब जागता है, देखता हम भिखारी हैं, फिर स्वप्न में घुसता है, चेष्टा करता है घुसने की, तो कुछ लाभ होता है क्या उसको? उसको मालूम है तो बेकार है। उसी तरह से ज्ञानी जो है जब गॉड कॉन्शसनेस स्टेट में आ जाता है, उसके बाद में उसको पता लगता है कि ये संसार क्या है। अब आपको तो हमने कई बार बताया, सपना नंबर वन ड्रीम नंबर वन, ड्रीम नंबर वन के अंदर ड्रीम नंबर टू हम देखते हैं, ड्रीम नंबर टू से जब हम ड्रीम नंबर वन में जब आते हैं तो हम कहते हैं ड्रीम नंबर टू इज रियल, ड्रीम नंबर टू इज अनरियल। जब हम ड्रीम वन नंबर वन से हम निकल के गॉड कॉन्शसनेस स्टेट में आ जाएंगे, उस स्टेट से हम फिर क्या ड्रीम नंबर वन में फिर घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। हमको ड्रीम नंबर वन के बारे में यथार्थ ज्ञान हो गया तो शरीर तो है अभी, काम भी होगा, मगर मनसा हम सब जान गए हमको किस हिसाब से काम करना है। नवद्वारे पूरे देही, नव नये कुर्बन न कार्यन। देही, देही कौन है? जो देह से भिन्न है वो देही है। इस देह के अंदर एक आत्मन है, उसको हम देही कहते हैं। वो देह से भिन्न है, वो देह का प्रकाशक है, वो आत्मा है। आत्मा का शरीर से कोई तादात्म्य नहीं होता, आत्मा कभी भी अनात्मा के साथ में कोई तादात्म्य नहीं करता। नवद्वार, ये हमारा शरीर को जो कहते हैं उसको नाइन डोर्स कहते हैं। तो नाइन डोर देखो, सात डोर तो आपके ऊपर में है और दो डोर जो है हमारे ट्रंक के नीचे में है, तो सेवन एंड टू नाइन। कई बार आपको ग्यारह दरवाजे भी मिलेंगे। ये सात दरवाजे कौन से हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात, हो गया सेवन डोर। अच्छा, दो नीचे हुए, नौ हुए। कई जगह आपको मिलेगा ग्यारह दरवाजे हैं। तो ग्यारह दरवाजे कौन से हुए? एक नेवल हो गया और एक कभी कभी आप देखोगे ब्रह्म ताल हुआ। छोटे बच्चों को देखिएगा, ये द्वार जो है ये थोड़ा नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। 11 दरवाजे वाले भी आपको मिलेंगे। न एव कुर्बन न कार्यन, तो आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, आत्मा तो न करता है न किसी को कहता है करो। बड़े मजे की बात है, न कुर्बन खुद भी नहीं करता है और न किसी को कहता है तुम करो, ऐसा भी नहीं कहता है। चैप्टर 2 में भी हम लोग पढ़ के आए हैं ऐसा आत्मा के बारे में, न मारता है और न किसी को कहता है कि तुम मारो। केवल उसकी उपस्थिति के अंदर सब काम होते हैं। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट के अंदर सारे काम होते हैं, सारे इक्विपमेंट अपने अपने इक्विपमेंट अपना अपना काम करते हैं, वैसे ही आत्मा की प्रेजेंस के अंदर सारी इंद्रियां अपना अपना काम करती है। आंख देखना शुरू करेगी, आंख कान सुनना शुरू करेंगे, जिसके जिसके जो फंक्शन है वो अपना अपना करना शुरू कर देंगे। तो उसी तरह वसी जो आत्मा के अंदर स्थित है, जो ज्ञानी है, वो क्या करता है, उसके पास आत्मज्ञान है, उसके पास आत्मज्ञान है और वो सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आत्मा तो कुछ करता नहीं है, शरीर से हो रहा है, वो तो आत्मज्ञान के ऊपर निर्भर है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए वो काम करे या ना करे उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। जब वो करता है तो इस भाव से करता है कि प्रकृति प्रकृति के तो गुण गुण के साथ में बर्तन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो साक्षी हूं उस कर्म का, इस हिसाब से वो करता है। आत्मा ना कुछ करता है ना करवाता है, यह भाव ज्ञानी के अंदर सहज है। हम लोग को सचेतन होना पड़ता है, मगर ज्ञानी के अंदर वो सहज है। सहज का मतलब कि मैं आत्मा हूं, दैट्स ऑल, ये उसमें सहज है। अब इस आत्मा का जो है नेचर क्या है वो अगले 2 श्लोक के अंदर बताने वाले हैं। 14वां श्लोक,
न कर्तृत्वं न कर्माणि,
न कर्तृत्वं न कर्माणि,
लोकस्य सृजति प्रभुः,
लोकस्य सृजति प्रभुः,
न कर्मफलसंयोगम्,
न कर्मफलसंयोगम्,
स्वभावस्तु प्रवर्तते,
स्वभावस्तु प्रवर्तते,
न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम्, स्वभावस्तु प्रवर्तते,
न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु प्रभु कौन है? आत्मा, जो हमारे भीतर है, शरीर के भीतर है, हर प्राणी के भीतर है, जो नवद्वारपुरी का जो मालिक है, जिसके कारण जो है सारा शरीर काम करता है। लोकस्य, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो प्रभु जो कि आत्मा है, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रभु लोकस्य कर्तृत्व न सृजति, किसी भी व्यक्ति के लिए कर्तृत्व की सृष्टि नहीं करता। प्रभु जो है, आत्मा जो है, वो कर्तृत्व की सृष्टि नहीं करता। हमारे में कर्तृत्व है ना, डुअरशिप। यहां भगवान बहुत साफ साफ लिखते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा कर्तृत्व न सृजति। क्योंकि आत्मा अकर्ता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, तो कर्तृत्व कहां से आया, किसने बना, वो तो बाद में बताएंगे, मगर पहले वो कहते हैं आत्मा ने कर्तृत्व नहीं बनाया। अच्छा, क्योंकि स्वयं अकर्ता है, न कभी कुछ करता है, न किसी और को कहता है कि तुम करो, ऐसा भी नहीं कहता, ऐसा भी नहीं कहता तुम करो। अच्छा, मगर उसकी उपस्थिति के अंदर सब कुछ होता है, मगर वो ये नहीं कहता है, हमारी इंद्रियों को नहीं कहता है कि मां खोलो देखो, तुम सुनो, ऐसा आत्मा नहीं कहता है। प्रभु लोकस्य कर्मणि न सृजति, वो प्रभु जो आत्मा है वो तो देखो कर्तृत्व भी नहीं बनाता है, और वो कहते हैं लोकस्य कर्मणि न सृजति, वो किसी का कर्म का सृजन भी नहीं करता। आत्मा न तो कर्तृत्व बनाता है और न ही कर्म की सृष्टि करता है। अच्छा, और क्या करता है प्रभु? न कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते, प्रभु लोकस्य कर्म फलम संयोग न सृजति। तो प्रभु, प्रभु कौन है? आत्मा। आत्मा कर्तृत्व नहीं बनाता, आत्मा कर्म नहीं बनाता, और आत्मा कर्म फल का संयोग भी नहीं करता। मतलब आत्मा कर्म फल नहीं देता। कौन देता है कर्म फल? ईश्वर देता है। आत्मा और ईश्वर में फर्क है। यहां प्रभु की बात हो रही है, प्रभु मतलब आत्मा। आत्मा न तो कर्तृत्व को बनाता है, तो डुअरशिप जो है आत्मा ने नहीं बनाया। हमारे में जो कर्तृत्व है उसको आत्मा ने नहीं बनाया। हम जो कर्म कर रहे हैं, आत्मा नहीं कहता तुम कर्म करो, ऐसा नहीं कहता है। कर्म फल संयोग, बोला हम कर्म फल दाता भी नहीं है, न हम भोगता है, न हम भोग बनाते हैं, न मैं भोगता हूं। तो न आत्मा करता है, कर्तृत्व को भी नहीं बनाता, कर्म भी नहीं बनाता, कर्म का फल जो होता है भोग, बोलो वो भी नहीं बनाता, और मैं भोगता भी नहीं हूं। अच्छा, देखो इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो गाड़ियां तो बहुत हैं, और हर गाड़ी जो है गैस से चलती है। हम लोग कभी पेट्रोल बोलते हैं, कभी डीजल बोलते हैं, कभी बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वो बैटरी से चलती है। इलेक्ट्रिक कार आ गई, फिर सोलर कार आ जाएगी, कुछ हो जाएगा ऐसा। तो आप मानते हो कि गाड़ी पेट्रोल या गैस के कारण चलती है? पेट्रोल का मतलब डीजल ले लो, बैटरी ले लो, उसके बाद में जो है आपका सोलर पावर ले लो, जो भी पावर लो, सब एनर्जी। बिना एनर्जी के गाड़ी क्या चल सकती है? नहीं चल सकती, ठीक ना? अच्छा, क्या ये पेट्रोल डिसाइड करता है कि कहां जाना है? क्या ये पेट्रोल डिसाइड करता है कि किस गति से जाना है, कितनी स्पीड में जाना है? क्या पेट्रोल ये ठीक करता है कि आपकी गाड़ी का हॉर्स पावर कितना होगा? आपकी गाड़ी हो सकती है स्कूटर होगा, 0.5 हॉर्स पावर हो, या 10 हॉर्स पावर हो, 20 हॉर्स पावर हो, 30 हॉर्स पावर हो, मगर पेट्रोल सब गाड़ियों का एक है, हुआ ना? तो पेट्रोल क्या ठीक करता है कहां जाना है? पेट्रोल आत्मा है, गाड़ी की आत्मा पेट्रोल है। तो पेट्रोल क्या ठीक करता है कहां जाना है? नहीं ठीक करता है। क्या गति से जाना है? ये भी नहीं ठीक करता है। इक्विपमेंट क्या है, उसका इक्विपमेंट क्या है, कितना पावरफुल उसका इंजन है, वो भी नहीं डिसाइड करता। आपको उस पेट्रोल के साथ में जो इंजन लगाना लगा दो, 1 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर, उसके हिसाब से उसका स्ट्रेंथ आएगी उसके अंदर में। ठीक उसी तरह से आत्मा के साथ में चींटी का शरीर लगा दो इक्विपमेंट, हाथी का शरीर लगा दो आत्मा के साथ में, हाथी का बल आ जाएगा, मनुष्य का शरीर लगा दो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में जैसा बल्ब लगा दो, जिसने वाट का बल्ब लगा दो ऐसा आ जाएगा, हीटर लगा दो, फैन लगा दो, जो मर्जी लगा दो। जैसे गाड़ी की आत्मा पेट्रोल है, ये जितने भी हमारे हाउस होल्ड अप्लायंस की आत्मा इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे ही सब शरीरों की जो एनर्जी देने वाला है, सेंसियंट पर्सन जो है वो आत्मा है। वो आत्मा न तो कर्तृत्व बनाता है, नंबर वन, न कि कोई कर्म करता है या कर्म बनाता है और न कोई कर्म फल देता। आत्मा कर्म फल देने वाला ईश्वर है। ईश्वर और आत्मा में फर्क है। क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस और ब्रह्मन प्लस सत्व प्रधान माया इज इक्वल टू ईश्वर। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो शुद्ध ब्रह्मन आत्मा की बात कर रहे हैं। जब उस ब्रह्मन उस आत्मा के साथ में सत्य प्रधान माया लग जाएगी तो वो ईश्वर हो जाएगा, तब फिर वो कर्मफल दाता हो जाएगा। शुद्ध आत्मा न तो कर्तृत्व उसमें है, न वो कर्म कोई बनाता है, न कोई कर्म फल का संयोग करता है, न भोग बनाता है, न वो भोगता है। अब प्रश्न होता है कि भाई किसने बनाया इसने, तो फिर कहते हैं स्वभाव है तू प्रवर्ते। स्वभाव, स्वभाव मतलब अविद्या लक्षणा प्रकृति माया। स्वभाव का मतलब किसने किया ये सब? ये सब प्रकृति ने किया। कर्ता, कर्तृत्व, कर्म, भोग, भोक्ता, ये सब प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यह भी देख लिया कि आत्मा सब में एक है, मगर संघात के एक्सप्रेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो गए। जैसे अब आत्मा टाइगर के साथ में हो लग जाएगी तो क्या होगा? हिंसात्मक हो जाएगा। वही आत्मा अगर गाय के पास हो या बकरी के पास हो तो डोसाइल हो गई ना। इक्विपमेंट डिफरेंट है, इक्विपमेंट हमारे डिफरेंट है। अच्छा, और ये आत्मा क्या करता है? 15वां श्लोक इसको हम लोग देख लेते हैं।
नादत्ते कस्यचित् पापम्।
नादत्ते कस्यचित् पापम्।
न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्।
तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
नादत्ते कस्यचित् पापम्। न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्। तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
अच्छा, यहाँ कहते हैं न आदत्ते कस्यचित् पापम् न च एव सुकृतम् विभु। विभु, विभु मतलब जिसको आगे प्रभु कहा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो हमारे भीतर है, जो परमात्मा है, वो क्या कहते हैं कि विभु न आदत्ते, कि वो आत्मा या परमात्मा किसी का भी पाप नहीं लेता। देखो, हम सब पाप देने को तैयार हैं। कोई देने को आ जाए, भिक्षाम दे ही, सारे पाप दे दो, सारा घर साफ करके कूड़ा निकाल के पाप दे दो, ले जाओ। मगर ये कहते हैं विभु ये तो पाप नहीं लेता, किसी के पाप नहीं लेता। अच्छा, और ये क्या करते हैं साहब? ये कहते हैं किसी के पाप, आप कैसे कैसे पाप कर सकते हो? काया वाचा मनसा पाप कर सकते हैं। काया वाचा मनसा आप कर्म कर सकते हो, शरीर से कर्म कर सकते हो, मन से कर सकते हो और वाक स्पीच से कर सकते हो। तो इनके कारण अगर गलत काम हुए तो वो पाप हो गए। तो पाप होने के कारण जो है ये आत्मा, ये कोई पाप आपके नहीं लेता, कोई पाप नहीं लेगा। अच्छा, विभु कश्चित सुकृतम ना आदत्ते, वो आपके सुकृत भी नहीं लेता, पुण्य भी नहीं लेता। विभु जो आत्मा है, जो ब्रह्मन है, जो कि अकर्ता है, जिसने कोई कर्म नहीं बनाया, कर्तृत्व नहीं बनाया, जिसने कोई भोग नहीं बनाए, जो खुद भोक्ता भी नहीं है, वो कहते हैं कि विभु कश्चित सुकृत ना दत्ते, किसी का पुण्य भी नहीं रहता, तो न तो पाप लेता है और न ही पुण्य किसी का लेता है। तो परमात्मा न ही पापी है और न ही साधु है। जो आदमी पुण्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? साधु। और जो पाप करता है? पापी। तो आत्मा न तो कुछ करता है न किसी से करवाता है, इसलिए क्वेश्चन ऑफ पाप पुण्य इन आत्मा अराइज ही नहीं करता। तो आत्मा कभी पापी भी नहीं हो सकता और कभी साधु भी नहीं हो सकता। और हम लोगों ने ये देखा भी था, जब हम लोगों ने क्रिएशन क्रिएटर बियॉन्ड देखा था तो आप लोगों को बताया था, दो तरीके आपको बताए थे कि हमारे किसी भी कर्म से आत्मा प्रभावित नहीं होता। एक रेड रेज हो गया, दूसरा स्क्रीन, बस आप लोग को मालूम है। तो स्क्रीन के अंदर आत्मा जो है वो व्हाइट स्क्रीन विदाउट प्रोजेक्टेड एनी आइटम ऑन दैट, वो हुआ। और दूसरा साइंटिफिक वे, लाल फूल देख के आंख लाल नहीं होती। उसी तरह से हम पीछे पहुंच जाएंगे कि हमारे मन के अंदर में अच्छे बुरे विचार जो भी आए, सुख या दुख आए, उसमें उन सुख दुख की वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला प्रभावित नहीं होता। जैसे सूर्य जब प्रकाशित करता है, दुनिया के सब लोग काम कर रहे हैं, सबके काम प्रकाशित हो जाते हैं, कोई जप कर रहा है तो कोई कहीं डकैती कर रहा है, तो उससे सूर्य को कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उसी तरह से आत्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, ज्ञान जो है, जो आत्मा है, जो विभु है, वो अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे आप एक बिस्तर के ऊपर में एक बल्ब रख दो, एक टॉर्च रख दो, जला के रख दो, उसके ऊपर एक मोटा कंबल डाल दो, तो क्या हो गया? लाइट जो है वो ढक गई ना, अब तो नजर नहीं आती है। अगर लाइट को देखना है तो क्या करना होगा? कंबल को हटा दो। जैसे सूर्य जो है कभी कभी जो है बादलों से ढक जाता है, सूर्य नजर नहीं आता है, मगर सूर्य के प्रकाश में बादल नजर आते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो बादल नजर नहीं आते, सूर्य के प्रकाश में बादल नजर आते हैं। अगर आपको सूर्य देखना है तो क्या करना है आपको? आपको क्या सूर्य बनाना है क्या? नहीं। क्या हटाना है? जिसने उसको कवर कर दिया उसको हटा देना है, बस यही काम करना है। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव, जंतव मीन्स जो जन्मशील मरणशील जो लोग हैं, संसारी लोग हैं, ये सारे के सारे मोहित हैं, सारे के सारे डेल्यूडेड हैं। अच्छा, क्यों डेल्यूडेड है भाई? वो अपने आप को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, हम अपने को पापी मानते हैं, अपने को पुण्य करने वाला मानते हैं। क्यों मानते हैं? डेल्यूडेड हैं। क्यों डेल्यूडेड हैं? अज्ञान के कारण डेल्यूडेड हैं। किस चीज का अज्ञान है उनको? अपनी आत्मा का अज्ञान है। ये के सारे सारे जो है डेल्यूडेड हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही मोह है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही मोह है। हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि की पिछली क्लास में भी देखा था कि मेन जो है आत्मज्ञान का पूरा लाभ हो गया, हमारा ज्ञान संशय रहित है, मगर फिर भी क्यों हम जो है उसमें स्थित नहीं हो पाते हैं? क्या हो गया? हमें आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? तो वहां भी शंकराचार्य जी ने पहले कहा कि कर्ता और भोक्ता जो है ये भाव जो है इनके कारण आपको इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, आप लोग सब मोहित हैं। तो ये कर्तृत्व भोक्तित्व आया कहां से? आत्मा के अज्ञान के कारण कर्तृत्व भोक्तित्व आया। आत्मा का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा फिर क्या कर्ता भोक्ता भाव रहेगा? क्योंकि आत्मा अकर्ता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानते हैं, तो ये अज्ञान जाएगा कैसे? ज्ञान से जाएगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा?
फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी।
फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना होगा। फिर क्या करना होगा? पहले प्रणिपाते है ना, परिप्रश्न है ना, पहले आपको प्रणिपात करना होगा। प्रणिपात मतलब सरेंडर करना होगा। उसके बाद में परिप्रश्न है ना, प्रश्न करना होगा, आत्मा के विषय में प्रश्न करना होगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके। फिर क्या करना होगा? सेवया, वहां जो गुरु बैठे होंगे उनकी सेवा करनी होगी। जब आप सेवा करोगे तब वो देखेंगे कि आपका प्रश्न का उत्तर दें कि नहीं दें, आप उस प्रश्न के अभी अधिकारी बने हो कि नहीं बने हो। अगर प्रश्न के आप अधिकारी हो गए तब आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और प्रश्न के अधिकारी आप नहीं होगे तो वो आपको कह देंगे मेरे को आता नहीं है, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। तो इस तरह से वो कह के आपको वापस भेज देंगे कि आप पहले अधिकारी बन के आओ। कौन है अधिकारी? कर्म संन्यास का, श्रवण मनन निधि ध्यासन का अधिकारी कौन है? कर्मयोग से जो युक्त है, जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, वो श्रवण मनन निधि ध्यासन का अधिकारी है। ठीक है, आज हम लोग यहीं रुकते हैं।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।
No worries. No, don't take today.
So I'll use last year's picture. It's the same people.
Yeah, banana.
That is better.
Now, sir, pushing how they have become young.
1 year. We are all getting younger and younger.
Oh, for them.